ईश्वर भक्ति का जो प्रारंभ है वो तो उसकी याद से ही होता है, लेकिन हम ईश्वर की याद करते क्यों हैं, ये बात पहले समझनी बहुत जरूरी है। हमारा जो एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ के बारे में वो यही है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा संसार में नहीं होता, हो भी जाता है और नहीं भी होता है। और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करने के बाद भी मनचाहा रिजल्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बिल्कुल अनिश्चित रहता है, इसमें कोई निश्चय नहीं होता। और यदि कुछ मिल भी जाए फिर भी भय बना रहता है कि ये छिन ना जाए। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, अंदर भय बना रहता है कोई कंपटीटर ऐसा ना पैदा हो जाए जो मेरे बिजनेस को फेल कर दे। एक अनजाना भय सबके मन में ये बना ही रहता है। इसी को महाजी कहते हैं प्रेमी, दुख का भय और सुख की इच्छा मनुष्य के अंदर हमेशा बनी रहती है। नए से नए सुख मिलना चाहिए इसकी इच्छा, और जो प्राप्त है वो कहीं छिन ना जाए, वो कहीं खो ना जाए, वो कहीं नष्ट ना हो जाए, उसका भय बना रहता है। और यदि कोई विचारवान है तो वो विचार से ही ये बात सीख लेता है, ये बात संसार के बारे में बिल्कुल सत्य है। यहाँ स्थाई कुछ भी नहीं है, जैसा सतपुरुष कह रहे हैं कि संसार नाशवान और परिवर्तनशील है, ये बात उसकी समझ में आ जाती है। तो इसीलिए जब वो सतपुरुषों के द्वारा या शास्त्रों के माध्यम से या सत्संग के द्वारा जब वो ये सुनता है कि ईश्वर में स्थाई सुख है जिसको हम आनंद कह देते हैं, ईश्वर में स्थाई शांति है और वो सारी प्रकृति का मालिक है, यहां तक कि मेरी देह का भी मालिक है, मेरी देह भी उसके वश में है, मेरे वश में नहीं है, तो वो ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर वो ईश्वर कैसा है, क्या ऐसे ईश्वर को मैं प्राप्त कर सकता हूं, मैं उसको जान सकता हूं। तो अपने तरीके से वो प्रयास करता है, लेकिन अंत में जब उसका भाग्योदय होता है तब किसी ना किसी पूर्ण गुरु की शरण में वो आ जाता है। और इसका लाभ क्या निकलता है, लाभ ये निकलता है उसका कि जो कुछ भी ईश्वर के बारे में, संसार के बारे में, सुखों के बारे में, दुखों के बारे में तरह तरह से वो सुनता रहा था, अब उसको एक पूरा विज्ञान समझने का मौका मिलता है एग्जैक्टली क्या चाहिए। क्योंकि गुरु का जो जीवन है और गुरु ने जो विज्ञान पेश किया है प्रकृति का, ईश्वर का, मेरा, उसमें इस शिष्य को भरोसा होता है क्योंकि इसने गुरु बनाया है इसको। तो गुरु के प्रति निश्चय, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति जो विश्वास है इसका, वो इसके काम आता है फिर इस रूप में कि ये उस ज्ञान को गहराई से पढ़ने की, समझने की कोशिश करता है। तब जाकर ये जिस तरह से जीवन जी रहा था उस जीवन को फिर गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जीने की कोशिश करता है। जैसा कि महाराज जी ने कह दिया, अभी प्रेमी ईश्वर मार्ग पर चलना है तो ये 5 नियम पालन करना पड़ेंगे। पहले तो समझ में ही नहीं आता था, मैंने तो आज तक कोई भी ऐसा मंदिर मस्जिद जाने वाला व्यक्ति नहीं देखा, मुझे तो एक भी नहीं मिला, होंगे जरूर लेकिन मुझे नहीं मिला एक भी पूरी लाइफ, जो ये कहे कि वासना को खत्म करने के लिए मानव देह मिली है। ये तो महाराज जी के मार्गदर्शन में जब आए तब ये बात समझ में आई कि वासना को खत्म करने के लिए मानव देह मिली है और वासना का खत्म होना ही ईश्वर प्राप्ति है। ये विज्ञान तो कभी हमने सुना ही नहीं किसी से। क्यों? वो कहते हैं कि वासना मन के अंदर पलती है। जो वासना है वो मन के अंदर पलती है और ये वासना ऐसी गहरी है कि देह की मृत्यु के पश्चात भी ये वासना मन का त्याग नहीं करती। ये मन के अंदर वैसी की वैसी बनी रहती है जैसा मौत के समय आपके मन का स्वभाव था। और नई देह में यही स्वभाव, यही वासना आपको जन्म से ही तो ये सोचने को मजबूर हो जाता है फिर ये जीव कि आखिरकार मैं हूं कौन। सबसे पहले तो अपने बारे में सोचता है कि जिसकी देह छीन ली जाती है लेकिन मन उसका बच जाता है, क्योंकि सारा कर्म फल, सारे कर्म के संस्कार, सारा आपका स्वभाव, सारी वासना आपकी मन के अंदर ही तो है, वो सुरक्षित। तो इस जीव की जो निज संपत्ति है, जो मौत के वक्त भी इसका संग नहीं छोड़ती, वो इसका मन है। इसी को सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं, इसको अंतःकरण भी बोल देते हैं। तो जीव की अपनी मुसीबत का कारण ये मन ही तो है। संसार में मुसीबत नहीं है इसके लिए, इसका अपना ही मन इसके लिए मुसीबत। आपके अंदर भय पैदा हो रहा है, ये मन की क्रिया है। आपके अंदर इच्छाएं पैदा हो रही हैं, ये मन की क्रिया है। आपके अंदर अफसोस पैदा हो रहा है, ये मन की क्रिया है। आपको स्वप्न दिखाई पड़ रहा है, ये मन की क्रिया है। किसी को दिन में भी भूत दिखाई पड़ रहा है, ये मन की क्रिया है। किसी को बैठे बैठे ईश्वर का दर्शन हो रहा है, सामने राम का पुजारी है, वो राम के दर्शन हो रहे हैं, ये मन की क्रिया है। सामने वास्तविकता कुछ भी नहीं है। महर्षि रमण के सामने जब एक व्यक्ति आया जिसको कृष्ण के दर्शन हुआ करते थे, कहीं भी दर्शन हो जाते थे उसको, तो जो उसने कहा कि मुझको तो आज कृष्ण के दर्शन हुए, तो साफ साफ वो कह रहे हैं कृष्ण के दर्शन तेरे मन में ही तो हुए हैं। वो तो कह रहा है मैंने साक्षात सामने देखे, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझको देख रहे हो, लेकिन महर्षि रमण कह रहे हैं दर्शन मन में ही तो किए हैं तुमने। इस रहस्य को ऋषि ही समझ सकते हैं, वही इसका भेद खोल सकते हैं। हम लोग तो स्थूल दृश्य को सत्य समझते हैं। और महाजी क्या कह रहे हैं इसके लिए, ये संसार इंद्रियों का अचंभा मात्र है। संसार की वास्तविकता जो हम आंख से, खुली आंख से देख रहे हैं, ये इसकी वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता इसकी कुछ और है। इसलिए वाणी एक्सप्लेन कर रही है उसको कि सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। जिस प्रकार रात्रि का स्वप्न का आपका अनुभव है, उसी प्रकार ये संसार का खेल है। इसमें दोनों में लेश मात्र भी कोई भेद नहीं है, लेश मात्र भी। और हम पूरा जन्म इसमें लगा देते हैं। तो इसीलिए ये सारी जो वासना है हमारी मन की, इस वासना ही से ही ये संसार तैयार हुआ है। और ये वासना ही का ही सारा खेल है। जिस प्रकार वासना का ही खेल मेरा स्वप्न है, इसको मैं आसानी से स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन सोचने को फिर भी तैयार नहीं होता। ये बात तो समझ गया मैं, चलो मैंने स्वप्न देखा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा इतने सारे लोग कहां से पैदा हो गए वहां पर। वासना मेरी थी, लोग इतने सारे पैदा कहां से हो गए वहां पर, इतना बड़ा संसार कैसे खड़ा हो गया। इस समय हम कभी नहीं कह सकते ये मेरे संकल्प से संसार तैयार हुआ, कह सकते हैं कभी हम? लेकिन वाणी को दूसरी बात करिए, वो करिए सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। तो इसीलिए महाजी कह रहे हैं प्रेमी देह संसार एक चीज है। अब सत्पुरुषों की बात सुनो तो पता लगता है देह संसार एक चीज है, इन दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार। तो इसका मतलब ये हो गया, यदि मैं बदल जाऊं तो सारा संसार बदल जाएगा। यदि ऐसा ना होता तो वाणी ये बात क्यों कहती कि सब जग रूप ब्रह्म का भेद भरम ना कोई, वाणी ये बात क्यों कहेगी, फिर तो गलत हो गई। जिस संसार को जैसा मैं अनुभव कर रहा हूं वैसा ही यदि है ये, तो ये वाणी तो गलत हो गई। मीरा की बात भी गलत हो गई, जित देखूं उत और सखीरी सामने मेरे सांवर, जो वाणी कह रही है वही मीरा कह रही है अपने अनुभव से। तो अब बताइए, ऋषि जब कह रहा है कि ये तुझे कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, तेरे मन तेरे ये दर्शन तेरे मन में है, और कृष्ण खुद क्या कह रहे हैं वो भी सुन लो। अर्जुन से क्या कह रहे हैं, अहम आत्मा गोडाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं। और अर्जुन क्या समझ रहा है उनको, जो सामने कृष्ण खड़े हुए हैं ये हैं कृष्ण। यदि हम कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, वो ईश्वर हैं, तो अपना स्वरूप खुद ही बता रहे हैं अर्जुन को कि अहम आत्मा गुडाकेश, और अपनी वो स्थित कहाँ है, सर्वभूताशय स्थिता, सारे प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो इसका मतलब प्रभु अंतर्यामी है, साफ बात आ गई। तो मैंने पूरे जन्म में या कितने जन्मों में कैसी कैसी उपासनाएं ईश्वर की होंगी, जो लोगों से सीखा मैंने करना शुरू कर दिया, कि निर्णय कभी नहीं हो पाया क्या ईश्वर है, क्या मैं हूं, ये जन्म मृत्यु क्या है, ये बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, कुछ पता नहीं मुझे। उपासना कर रहा हूं तो इसीलिए पूर्ण ऋषि से जब भेंट होती है या पूर्ण ऋषि पर जब आपको विश्वास आता है, तब उसकी बात को आप श्रद्धा के आधार पर मानते हो। पता समय भी आपको नहीं है, लेकिन आपने गुरु बनाया है, आपका दिल नहीं कहता कि गुरु की बात का उल्लंघन किया जाए, तो आपका समर्पण गुरु के प्रति होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन का समर्पण जब कृष्ण के प्रति हुआ, तो उसको युद्ध करने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लाखों को मार दिया उसने, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इतने लोगों को मारने का उसके मन के अंदर संस्कार तक नहीं बना, और हम एक बिल्ली को ही मार दें उसका गहरा संस्कार बन जाएगा और बदला देना पड़ेगा। समर्पण उसका पूर्ण था, इसीलिए कृष्ण तत्व को वो जान गया और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। तो कृष्ण कोई नाम नहीं है, कृष्ण कोई रूप नहीं है, कृष्ण जीवन सत्ता है, जीवन शक्ति है या जीवन है, इसीलिए उसका नाम है चेतन सत्ता, जिसमें चेतना तो है, जड़ नहीं है वो। भाई संसार की भी तो सत्ता दिखाई पड़ रही है आपको, लेकिन जड़ है ये। लेकिन जड़ वस्तु भी जो आपको दिखाई पड़ रही है, जो मेंटेन की हुई है, वो चेतन सत्ता के कारण है। जैसे कि मेरा ये शरीर है जड़ ये, लेकिन ये टिका हुआ है, कब तक टिका हुआ है, जब तक चेतन सत्ता इसको टिकाए हुए। तो सारा खेल इस देह के अंदर चेतन सत्ता का है या मेरा है, जरा विचार करके तो देखो। मैं तो लाचार होकर जी रहा हूं, कुछ हाथ में ही नहीं मेरे, किससे शादी होगी, होगी भी नहीं होगी मुझे पता ही नहीं, कौन से बच्चे होंगे, लड़का होगा लड़की होगी, पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, रोगी पैदा होंगे या स्वस्थ पैदा होंगे मुझे पता ही नहीं। मैं जो चीज मिल जाती है उसको यूज करना शुरू कर देता हूं, जीवन में निश्चित कुछ है ही नहीं। बड़ा प्रेम करता हूं, बड़े ढंग से पालता हूं, पढ़ाता लिखाता हूं, कब मर जाएंगे पता ही नहीं। जन्म की हर स्थिति तेरी अनिश्चित है और इसको होश ही नहीं तुझे, यहां तो परमानेंसी की तलाश कर रहा है। तो जब सही रूप में जैसा शास्त्र वर्णन कर रहे हैं, जैसा समता विलास वर्णन कर रही है डिटेल में, उस तरीके से जब आप सोचते हो ना गहराई से, तब आपकी आंखें खुलती है। मैं कर क्या रहा हूं, मैं सोच क्या रहा हूं, मेरी जिंदगी तो बर्बादी हो रही सारी, आज तक मैंने बर्बादी की हो, करा क्या मैंने। ईमानदारी से देख लो आप अपना जब जब से आपको होश है और आज तक का डेट तक का जीवन जिया है, कितनी बेचैनी लेके जियो, दुख ज्यादा भोगे हैं, बेचैनी ज्यादा भोगी है या चैन ज्यादा भोगा है, जरा विचार करके देख लो ईमानदारी से। तो जब ये इस प्रकार शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार ये गहराई से विचार करता है, तब ये खुद इस निश्चय पे पहुंच जाता है कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। खुद समझ जाता है दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। इसके मुकाबले में जब ये वाणी में पढ़ता है, शास्त्र में पढ़ता है, ईश्वर आनंद रूप है, ईश्वर शांति रूप है, और ऐसी कीमती वस्तु है जिसको ये प्राप्त हो जाती है, उसके बारे में वाणी क्या कह रही है, बाल ना बीका कर सके चक्रवर्त भूपाल। दुनिया में चक्रवर्ती राजा भी यदि कोई हो तो उसको टच तक नहीं कर सकता। जिसने ईश्वर भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उसकी यह अवस्था है कि वो उसको टच तक नहीं कर सकता। जैसे हम ईश्वर का कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? ईश्वर हमारा सब कुछ बिगाड़ सकता है, हम ईश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसी प्रकार जो सत्पुरुष हमारे सामने है, देखने में तो वो देह है, लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि प्रभु खुद ना चाहे। इसलिए वो निडर है, हर बंधन से मुक्त है, हर भय से मुक्त है, हर बेचैनी से मुक्त है। ये सत्पुरुष का जीवन, उसका इतिहास बताता है। और हम कितने बंधन में, ये हम सब जानते हैं। तो इसीलिए जब ये सब चीजें मैं देख तलाश करता हूं, और फिर दूसरी बात एक सोचता हूं मैं कि मैं अपने बारे में देह करके जानता हूं, हम भी इतने बैठे यहां पर, किसी के मन में आता है कि मैं देह नहीं हूं? पढ़ लेते होंगे, सुन लेते होंगे, लेकिन कभी यह भाव आता है कि मैं देह नहीं हूं? प्रैक्टिकल व्यवहार में देख लो, देह करके ही सब कुछ करते हैं, परिवार भी देह करके पाल रहे हैं, संबंध भी हम देह करके बना रहे हैं, और मान अपमान भी देह करके हम भोग रहे हैं। इसीलिए इस देह का कोई अपमान कर दे, मैं लाल आग बबूला हो जाता हूं। कितना पक्का निश्चय है कि मैं देह हूं, और सारी अध्यात्म विद्या आपको यही तो सिखा रही है, तू देह नहीं। वो कह रही है जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। जन्म मरण किसका होता है? देह का होता है ना। तो अध्यात्म विद्या तो तुझको ये सिखा रही है तू देह से मुक्त हो जाएगा, और मैं देह बना बैठूंगा। तो इतनी सी बात मैं सोचने को तैयार नहीं हूं कि सारी अध्यात्म विद्या जो मैं आज तक जो भी पूजा पाठ किया है वो तो यही कह रही है तू इस जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, अर्थात देह के बंधन से तू मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब मैं तो देह के बंधन में हूं, जी रहा हूं, ये कभी सोचता हूं मैं इस देह के बंधन में जी रहा हूं। ये जेल कहीं दूर नहीं है, ये देह ही कैद खाना है मेरे लिए। सारी मुसीबतों की जड़ तो ये देह है, मैं रोगी कहां होता हूं? देह रोगी होती, और देह जब रोगी होती है, क्योंकि सारे काम मेरे देह के कारण चलते हैं, इसलिए मैं दुखी हो जाता हूं। किसी से नफरत होती है, वो देह करके होती है। तो मनुष्य की सारी परेशानी का कारण, सारा क्लेश का कारण तो उसकी अपनी देह है, और संसार में कहां परेशानी है? लेकिन देह का निर्माण कौन करता है? इसका सूत्र वैसा ही है जैसा स्वप्न में अब मैं अपनी देह का निर्माण करता हूं। वो मेरी देह स्वप्न में कहां से तैयार होती है? मन तो ही तैयार करता है। मन में क्या है? वासना है। तो जिस प्रकार मन की स्थित वासना मेरी स्वप्न की देह तैयार करती है, उसी प्रकार मेरे मन की वासना ये जागृत देह तैयार करती है। इसमें कोई भेद नहीं। तो यदि मेरी देह खराब है, मेरी देह की परिस्थितियां खराब है, इसका स्रोत मेरा अपना मन है, इसका 100% जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। अब बताइए मुझे, यदि मैं ये बात ना सोचूं, गुरु जो कह रहा है तेरी अपनी वासना ही तेरे दुख का कारण है, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरा संसार दुख का कारण नहीं है, तेरी अपनी वासना ही तेरा तेरे दुख का कारण है। तू सबको कहता है कि ये इसके कारण दुखी हूं। अब गुरु आपको सिखा रहा है तू केवल अपने कारण दुखी है, दूसरी कोई वस्तु संसार में तेरे लिए नहीं बनी है, तू खुद ही हर चीज का जिम्मेदार है। तो इसीलिए गुरु तुझको आईना दिखाता है और फिर कहता है कि तू जीव है, जीवात्मा है। क्यों कहते हैं जीवात्मा इसको? क्योंकि इसमें भी चेतना है, जिस प्रकार ईश्वर में चेतना है। मुझके अंदर होश है नहीं है, मैं कहता हूं मैं बेहोश हूं, मेरे अंदर होश है, मैं जानता हूं। हाथ पैर मेरे बारे में नहीं जानते, मैं हाथ पैर के बारे में जानता हूं। मन मेरे बारे में नहीं जानता, मैं मन के बारे में जानता हूं। तो इस देह के अंदर जानने वाली शक्ति कौन है? मैं हूं। और मेरे बारे में जानने वाली शक्ति कौन है? वो ईश्वर है। इसलिए हम सबके बीच में यदि गुरु बैठा हो, यहां पर आप मन में कुछ भी सोच रहे हो, तो गुरु में वो शक्ति है कि वो सबको बता देगा आप क्या सोच रहे हो। और आप क्या बताओगे? मैं क्या सोच रहा हूं ये बता सकता हूं। तो इसलिए गुरु को सर्वज्ञाता कहा जाता है, गुरु को सर्वव्यापक कहा जाता है, गुरु को अंतर्यामी कहा जाता है। वो हम सबके अंदर बैठा हुआ है। जब सबके अंदर बैठा हुआ है तो सर्वव्यापक हुआ या नहीं हुआ वो? और सबके बारे में जानता है इसलिए सर्वज्ञाता हुआ या नहीं हुआ वो? तो इसीलिए आपको यह सिखाया जाता है, जैसे कि रामायण कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं ईश्वर का अंश हूं क्योंकि ईश्वर चेतन रूप है, मैं खुद चेतन रूप हूं। इसलिए जिस प्रकार ईश्वर अविनाशी है, इस प्रकार मैं भी अविनाशी हूं। इसलिए मौत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वो जो बिगाड़ती है देह का बिगाड़ती है। और महाराज जी से जब पूछा गया, महाराज जी जन्म और मृत्यु के बीच में कोई ऐसा पीरियड होता है, कोई गैप होता है क्या? तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। और जोंक का एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार जोंक जब चलती है तो जब अगला मुंह जमा लेती है तो पीछे से पूंछ उठाकर आगे बढ़ती है। तो अगला जन्म मृत्यु के वक्त जीव खुद निर्धारित कर लेता है, तब पुरानी देह का त्याग करता है। वैदिक काल से यह सिद्धांत चलाया है, शास्त्र में जगह जगह लिखा पड़ा हुआ है। और मैं कितना घबराता हूं मौत से, जहां मौत है ही नहीं, एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए भी मेरी मौत नहीं है, और मैं कितना घबराता हूं अज्ञानता के कारण। लेकिन कभी जीते जी इस बात की नहीं सोचता कि जिस देह के कारण इतना घबराता हूं मैं, सारी जिंदगी इतना परेशान रहता हूं, इसको सजाने के लिए, इसके अहंकार की पूर्ति के लिए, इसके अंदर वासना की पूर्ति के लिए क्या मैं नहीं करता दुनिया में। और जिस ईश्वर के अंदर चैन है परमानेंट, जिस ईश्वर के अंदर परमानेंट प्रेम है, जिस ईश्वर के अंदर परमानेंट जो है वो आनंद है, सुख है, उस ईश्वर, वो ईश्वर अंतर्यामी है, मेरे संग ही निवास कर रहा है वो। उसके बारे में जानने की मैं कोई कोशिश नहीं करता, कुछ पढ़ाई लिखाई मेरी नहीं होती, खाली माथा टेक के मंदिर में काम चल जाता है मेरा। तो जब इसका निश्चय इस एनालिसिस करके इसके अंदर आता है, तब ये गुरु की बात मानकर ईश्वर की भक्ति करने की कोशिश करता है। इसीलिए गुरु जैसा बताता है वैसा ये उस ईश्वर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है। गुरु ने कहा कि ये मंत्र का जाप करना है तो वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा, उसे क्या पता। इसीलिए इस मामले में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए। दुनिया में तो भेड़ चाल है, जैसे कि साधना पद्धति के बारे में, तो महाजी तो ने समता विलास में लिख दिया, संत प्रकाश ग्रंथ में भी लिख दिया कि नाम गुरु से मिलता है, क्योंकि नाम कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको दे दूंगा आप मुझे दे दो। नाम सुपर पावर खुद है, वो नाम खुद गुरु है। इसीलिए माँ जी ने परिभाषा लिख दी शुद्ध निधिध्यास में कि बीज मंत्र उसको कहते हैं जो सिद्ध पुरुष से प्राप्त हुआ हो। और कोई कहीं से लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है, जो गुरु देता है वही उसको पता लग जाए, विधि भी पता लग जाए, तो महाजी उसके लिए लिखते हैं ये केवल एक, उन्होंने कोई दूसरा शब्द यूज किया जैसे भेड़ चाल वाले यूज करते ना हम लोग, ये केवल एक लोक पद्धति है, लोकाचार है, एक परंपरा पालन करते हैं लोग। तो इसीलिए महाजी ने उन लोगों के लिए जो महाजी के सामने प्रेजेंट नहीं थे और जो उनसे उनकी भेंट नहीं हो सकी, और महाजी ने खुद जिनको शिष्य नहीं बनाया उनके पास नाम नहीं था, लेकिन नाम की कमी है, सारी दुनिया में फैले पड़े हुए हैं, कहीं से नाम लिया। लेकिन जब ईश्वर प्राप्ति करने चले तो गुरु की आज्ञा उल्लंघन करके ही सारी जिंदगी आप वहम में फंसे रहोगे, आपके अंदर शक ही बना रहेगा। महाजी कहते प्रेमी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं आती, तो कर तो सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन तेरे अंदर हमेशा संशय बना रहेगा। और गुरु के वचन के अनुसार जब तू चलेगा ये संशय तेरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखिए कि महाजी तो हमेशा नहीं बैठे रहते, इसीलिए तो जिस प्रभु ने महाराज जी के रूप में अवतार लिया उसी प्रभु ने महामंत्र के रूप में भी अवतार लिया, नहीं तो लोग क्या करेंगे फिर, महाजी को मानेंगे तो साधना क्या करेंगे। इसलिए उसकी वाणी प्रकट हुई ताकि कोई मनमानी ना करे, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता। सर्व सिद्धि का मतलब मालूम क्या होता है, हम ये समझते हैं हमारे काम बन जाएंगे सारे, नौकरी नहीं मिली है तो नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस चल पड़ेगा, ये सिद्धि मिल जाएगी हमको। अरे सर्व सिद्धि लिखा है वहां पर, सर्व सिद्धि का मतलब होता है जहां एक भी वासना आपके अंदर बाकी ना बचे, एक भी इच्छा बाकी ना बचे, वो सर्व सिद्ध हो गया अर्थात पूर्ण तृप्त हो गया, वहां वासना का लेश मात्र भी बाकी नहीं बचा, इसको कहते हैं सर्व सिद्धि। इसीलिए ये दोहा आगे कह रहा है कि जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, अपार का मतलब होता है लिमिटलेस, वो कल्याण, मंगल का मतलब है कल्याण और कल्याण का मतलब होता है मोक्ष। तो ये लिमिटलेस कल्याण आपको मंत्र का जाप देगा, ये वाणी कह रही। तो लोग तो अपनी अपनी दुकानें चलाते रहते हैं और लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, उन्हें यह भी होश नहीं है मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूं, किसी को धोखा देना कितना बड़ा पाप है उनको होश नहीं इस बात का, और सजा के हकदार तो हैं, आप किसी को धोखा दोगे धर्म मार्ग में भी तो सजा तो मिलेगी आपको, लेकिन आपको भय कहाँ है, ये काम वही तो करेगा ना जो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उस शिष्य को होश कहाँ है मेरा, कितनी मुश्किल से गुरु मिला और मैं कर क्या रहा हूं। तो अनजाने में ही अज्ञानता में हम ऐसा स्वर्णिम अवसर भी गंवा देते हैं और पाप करने लगते हैं। अध्यात्म मार्ग में किसी को धोखा देना इससे घोर पाप और क्या होगा, पूरा जन्म उसका बर्बाद कर रहे हैं। तो वाणी जैसी चीज जो समुद्र प्रकाश ग्रंथ में लिखी पड़ी है, कहते हैं हमारा महाराज जी गुरु हैं और वाणी का उल्लंघन करते, काहे के गुरु है भाई, कहां खड़े हुए हो, तो तुम्हारी अपनी बुद्धि नहीं है क्या, और वाणी लिखित रूप में कह रही है कलह कलेश सब दूर होए पाए ज्ञान तत योग मंगत तत अक्षर नित गाइए प्रभु दर्शन होए सहयोग। उसकी कोई खोज करने की कोशिश नहीं करी, नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो किसी से, खोज तो करो। मैं भी जब भ्रमित हुआ मुझको भी भ्रमित किया गया, तो मैंने 9 साल खोज करी, 9 वर्ष लगे मुझको सारी स्टडीज करने में, उपनिषद से लेकर गीता से लेकर रामायण से लेकर महाजी के सारे ग्रंथ से लेकर अन्य सत्पुरुषों की जो वार्तालाप थे इस विषय में उनको सारा, 9 वर्ष में मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि महाराज जी तो सब कुछ छोड़ गए हैं, तैयार बिल्कुल, और कोई पढ़ने को समझने को तैयार ही नहीं है। तो 9 वर्ष बाद ये निश्चय हुआ कि महाराज ने एक एक शब्द बिल्कुल ठीक लिखा है, कहीं कोई भ्रम छोड़ा ही नहीं है, लोग भ्रमित कर रहे हैं, महाराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तब जाकर महामंत्र का जाप शुरू हुआ, और उसके बाद पता लगा कि महाजी कहते थे प्रेमी गुरु की बात का उल्लंघन करने पर कभी भी तेरी बुद्धि से संशय खत्म नहीं हो सकता। ये बात तब समझ में आई, वास्तव में फिर कोई संशय नहीं रहा। तो साधना की प्रगति, भक्ति की प्रगति संशय निवृत्त होने के बाद शुरू हुई। तो इसीलिए पहले तो आपको ना ये निश्चय चाहिए दृढ़ कि मैंने ईश्वर प्राप्त करना है, संसार में मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं मेरी जिंदगी या मेरा जीवन कंप्लीट फेलियर है, 100%। ईश्वर भक्ति छोड़कर मैंने संसार में कुछ भी क्यों ना किया हो वो मेरा जीवन 100% कंप्लीट फेलियर है। इसलिए वाणी साफ कह रही है, बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सो खोई। मानव जीवन सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारने यह दुर्लभ जीवन पाए। वाणी तो साफ निर्णय कर रही है कि इस काम को यदि मैंने नहीं किया तो मानव देह के द्वारा मैंने पशु जीवन व्यतीत किया, समझता मैं अपने आप को कुछ भी दूं उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। तेरे बारे में जो वास्तविकता है वो तो गुरु बयान कर रहा है, वो तो वाणी बयान कर रही है। तो इसीलिए जब मैं इस विज्ञान को समझता हूं, ईश्वर की जरूरत क्यों है इस बात को समझता हूं, मैं कौन हूं इस बात को समझता हूं, मैं किस बंधन में हूं इस बात को समझता हूं, तब जाकर मेरे अंदर एक तड़प पैदा होती है कि बिना ईश्वर भक्ति के, बिना ईश्वर को जाने तो मेरी जिंदगी बर्बाद है, अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा हूं और जिनको पाल रहा हूं उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि उनका भी तो मार्गदर्शन मैं नहीं करना था, पिता बन गया, मार्गदर्शन करना मुझे आता नहीं। जिस प्रकार वासना के सागर में मैं डूबा रहा, बच्चों कहता हूं तुझको और गहरे सागर में डूबाऊंगा मैं, तेरा विकास करूंगा मैं, पिता ये कहता है बच्चों से मैं तेरा विकास करूंगा, अपना तो विकास कर नहीं पाया, बच्चों का कहां से विकास करेगा। तो हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे, यही करेंगे हम और क्या करेंगे। तो जब ये अंदर से सारी क्लैरिटी होती है तब जाकर ये दिल से प्रेम से ईश्वर की याद शुरू करता है, और वो भी गुरु के बताए हुए निर्णय के अनुसार, मनमानी तरीके से नहीं। तब अंतर्यामी गुरु खुश होता है कि अब ये मेरा शिष्य बना, शिष्य का मतलब है अब ये मेरी बात कर, बात को मानकर चलने को तैयार है। तूने पास में जितनी उपासनाएं की थी, ईश्वर के बारे में जितने निश्चय थे, अब उन सबका निश्चय तेरा गुरु के आगे समर्पण हो जाता है। अब मैं वो निश्चय लेके चलूंगा जो गुरु निश्चय दे रहा है, मेरे लिए ईश्वर वो है, वैसा है जैसा गुरु बता रहा है, जैसा शास्त्र, उसका शास्त्र बता रहा है। तो इसीलिए गुरु बाहर की उपासना से हटाकर आपको अंदर की उपासना में ले आता है, क्योंकि तू भी इस देह के अंदर मौजूद है, तेरा बंधन जो मन है वो भी इस देह के अंदर मौजूद है, और तेरा जो मोक्ष ईश्वर है वो भी इस देह के अंदर मौजूद है। तो विचार करके तो देख, तो देह ये उपासना का घर है, इसलिए वाणी इस देह को मस्जिद कह रही है, इस देह को मंदिर कह रही है। तो इस देह रूपी मंदिर में बैठकर मैं अंतर्यामी प्रभु की उपासना करता हूं, प्रेम से, दृढ़ निश्चय के साथ में, उसको अपने जीवन का लक्ष्य जानकर, और कोई लक्ष्य नहीं है मेरा, और जितने क्रियाकलाप है मेरी जो देह से हो रहे हैं उसको मैं प्रारब्ध के अधीन देखता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लापरवाही होकर जो चाहे करता रहूं, क्योंकि अभी मेरे अंदर कर्तापन है मौजूद है, और अभी मेरे अंदर देह का मोह मौजूद है, अर्थात देह का भ्रम मौजूद है। वो क्या भ्रम है? कि मैं देह हूं। तो जब तक ये भ्रम है तब तक तूने शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार कर्म करने की कोशिश करनी है। यदि कमाई की बात आती है तो गुरु कहता है कि मर्यादा में कमा, ईमानदारी से कमा, क्योंकि देने वाला ईश्वर है, मनुष्य देने वाला नहीं है तुझे, देने वाला ईश्वर है तेरा। वहां से विश्वास नहीं हिलना चाहिए, वहां से निश्चय नहीं डिगना चाहिए। तो तुझे काय का भय है फिर? तो ना ईमानदारी छोड़ता है ना मर्यादा छोड़ता है। तो इसलिए जब गुरु कहता है ये तूने भक्ति करनी है तो तुझको अपना दैनिक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इसलिए महाजी ने लिखा समदाविलास में कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायकाल सिमरन करना लाजमी है। अरे जिस उद्देश्य के लिए मानव देह मिली है उस उद्देश्य के लिए तो आपकी प्राइम ड्यूटी हो गई, उसमें कंसेशन कैसे ले सकते हो? ये देह ही उस काम के लिए दी गई आपको। तो वो कह रहे हैं 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायकाल सिमरन करना लाजमी है, और 30 से 40 तक कहते हैं 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा सायकाल सिमरन लाजमी है, और 40 से 60 तक कहते हैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे सायकाल लाजमी है। ये मिनिमम प्रोग्राम बता रहे हैं वो, और 60 से ऊपर अधिक से अधिक। तो अब बताइए मुझे, यदि मैं मर्यादा में नहीं कमाऊंगा, सीमित समय मानिए 8 घंटे मैंने कमाई के निश्चित कर लिए, तो 8 घंटे में 9 घंटे निकालता पैसा कमाने के लिए, 8 घंटे में ही जितनी कमाई होगी मैंने उसी में गुजारा करना है, उसी में संतुष्ट रहना है कि प्रभु ने मेरे को इतना ही देना है बस। तो इसलिए महाराज कहते हैं प्रेमी गुजरान वाला प्रोग्राम बना। मैं गुजरान वाला प्रोग्राम नहीं बनाता, मैं वासना वाला प्रोग्राम बनाता हूं। मेरे मन में जैसे वासना पाल रखी मैंने, अब वो सारी वासना मेरी पूरी होना चाहिए, ये मेरा स्टैंडर्ड है, कमी नहीं है। वासना इतनी फैली हुई है कि हर चीज मेरे लिए कम हो गई है। तो इसीलिए जिसने भक्ति करनी होती है वो गुरु की हर बात को बारीकी से पढ़ता है। मैंने ईश्वर प्राप्त करना है भाई, मेरी जन्म इस वास्ते मिला मुझको, तो वो उसका दिल जो है फिर सिमरन में लगता है, क्योंकि लक्ष्य उसके जीवन का है ना वो। और लोग जो सिमरन करते हैं उनका लक्ष्य सुना ईश्वर प्राप्ति होता है, वो सिमरन करते हैं, लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं होता। हो सकता मुंह से कह भी दे मेरा लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति है, लेकिन उनकी करने से पता लग जाएगा इसका दूर दूर तक लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं, दूर दूर तक लक्ष्य भोग की प्राप्ति है, भोग इसके मन अनुकूल बने रहना चाहिए। तो जिसने ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य बनाया है, इस बात को समझा है कि देह क्या है, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, पुनर्जन्म क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, हर चीज की इसके जिसके अंदर क्लैरिटी है, या यूं कह लें कि उसके अंदर विवेक है, तो उसका जो सिमरन है वो वैसे ही होता है जैसे कि कोई जब इंजीनियरिंग करने के लिए सोचता है तो उसके कंप्रेशन की तैयारी कितनी सिंसेरिटी से करता है, और जो पूरा सिंसियर होता है वो कंप्रेशन पास भी कर लेता है, इंजीनियर बन भी जाता है। तो इसी प्रकार मैं भी एक दिन भक्त बन ही जाता हूँ, फिर मेरी ये अवस्थाएं होती है अंदर की, सिमरन भजन ध्यान समाधि। सिमरन स्थिति वो है जब हम उस मंत्र को, गुरु मंत्र को गुरु करके जाप करते हैं, ये लाइव गुरु खुद है। इसलिए महर्षि रमण कहते हैं कि आत्मा मंत्र गुरु कुंडलिनी एक चीज है। रामकृष्ण परमहंस भी ये कहते हैं कि ईश्वर गुरु और मंत्र एक चीज है, एक ही चीज के तीन ट्रांसफॉर्मेशन हैं, मैनिफेस्टेशन हैं, तीनों लाइव गॉड हैं ये, या यूं कह रहे तीनों लाइव गुरु हैं। इसीलिए गीता में कहा कृष्ण ने मंत्रो अहम मैं मंत्र हूं, साफ साफ तो कह रहे हैं। हम मंत्र को लैंग्वेज समझते रहते हैं, वो एक लैंग्वेज है। ये नहीं सोचा कभी ये मंत्र समाधि में प्रकट होता है महाराज जी, और समाधि में तो देह का भी होश नहीं होता। जब देह का होश नहीं होगा तो वाणी का मतलब कि लैंग्वेज का होश कहां से होगा। लैंग्वेज तो मन की देन है ना, लैंग्वेज का अनुभव तो मन से होता है। जिसको मन मन के अंदर कोई संकल्प नहीं उठ रहा, देह का इसको होश नहीं है, इसका अंदर संसार का भी होश नहीं है, फिर लैंग्वेज का होश कहां से हो जाएगा। वहां भाषा गायब है, यदि भाषा रहेगी तो समाधि नहीं होगी। तो संकल्प रहित अवस्था समाधि है, क्योंकि आप एक शब्द भी उच्चारण करके देख लो या सोच के देख लो, मन चलेगा तभी तो सोचोगे। सोचने की प्रक्रिया मन ही करता है, जहां सोचना बंद है वहां मन की सत्ता काम ही नहीं कर रही, वो है समाधि। तो समाधि में केवल ईश्वर सत्ता मौजूद है, उस हालत में ये मंत्र आ रहा है, तो वह ईश्वर सत्ता मंत्र रूप में अवतार ले रही है या नहीं ले रही है। ये सिंपल सा एनालिसिस है। क्यों ले रही है वो, क्या ईश्वर बंधन में है, क्या या महाराज जी बंधन में है। मैं बंधन में हूं और वो परमात्मा दीनदयाल है, पतित पावन है, वो कृपालु है, वो तो मेरे दुख को जानता है। इसीलिए वो गुरु रूप में अवतार लेता है, मंत्र रूप में अवतार लेता है। दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। इस दुखी जीव की पुकार सुनकर, मेरी पुकार सुनकर वो मेरा इस जगत से उद्धार करने के लिए आए। तो ये मेरे लिए महामंत्र अवतरित हुआ है, मेरा कल्याण करने के लिए। गुरु मेरा कल्याण करने के लिए, मुझको ज्ञान देने के लिए अवतरित हुआ है। तो मैंने उनकी बात मानकर एक चित्त होकर उस प्रभु की याद मंत्र के माध्यम से करनी, क्योंकि अंदर अंतर्यामी प्रभु है मैं जानता हूं, लेकिन मैं मेरा संबंध कोई भी नहीं उनसे, कैसे याद करूंगा उनकी। मैं प्रभु है, प्रभु है, ये करता रहूंगा क्या मैं। तो इसीलिए वो प्रभु अंतर्यामी प्रभु मंत्र रूप में अवतार लेते हैं, तो फिर मैं प्रभु का संग किस रूप में करता हूं, मंत्र रूप में करता हूं। इसीलिए वाणी कह रही है कि जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, जो इसका डिवोशन के साथ भक्ति के साथ इसका मंत्र का सिमरण करेगा, तो भक्ति तो लाइव चीज से होगी ना, प्रेम तो लाइव चीज से होता है, तो उसको मैं ईश्वर जानकर गुरु जानकर जब मैं उस मंत्र का सिमरन करता हूं तो मेरे अंदर प्रेम पैदा होता है। मैं सौभाग्य समझता हूं सिमरन करने बैठता हूं कि वाह प्रभु, अब मेरा और आपका मान लिया घंटे भर बैठा हूं, मेरा आपका सीधा मिलन हो रहा है। जैसे मन का और वस्तुओं का मिलन होता नहीं होता, इसी प्रकार मन का और मंत्र का मिलन हो रहा है। तो इस प्रेम के द्वारा सिमरन से क्या होता है, मन के अंदर जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, जिसको आप जानते तक नहीं हो, ये मंत्र उनकी सफाई करता है। बाहर आप परहेज करते हो, मर्यादा का जीवन व्यतीत करते हो, जैसा गुरु ने मार्गदर्शन किया है, अंदर जन्म जन्मांतर के जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, उसको ये मंत्र साफ करता है। मंत्र शक्ति से वो उसका उसकी सफाई होती है, तब एक स्थिति अंदर तैयार होती है मन में, तब आपके अंदर फिर साधना में प्रेम पैदा होता है। कभी आपका अश्रुपात होता है, कभी आपको ऐसा लगता है कि अरे घंटा मुझे दुनिया तो ख्याल ही नहीं रहा, बिल्कुल आज तो मंत्र में मन बहुत लगा। ये तब स्थितियां आती हैं जब मंत्र का आप जो है लंबे समय तक जाप करके अपने संस्कार साफ कर लेते हो, तब अंतर्यामी ये जो मंत्र है गुरु रूप में, ये अगली कृपा करता है। किस रूप में, नाद रूप में या कुंडलनी रूप में। तो नाभि चक्र आपका जो है ये खुलता है, तब आपको एक नई चीज का अनुभव होता है, जिसको कुंडलनी कहते हैं, किसी को कुंडलनी के रूप में, जिसको महाजी ने वाणी में निरत कहा है, और किसी को नाद रूप में। ये आपकी चॉइस नहीं है, ये प्रभु की लीला है, वो जिस रूप में जिसके अंदर कृपा करें। तो फिर ये जब अंदर प्रकट होता है तब आपका ध्यान जाता है ऑटोमेटिकली, ये क्या है। इसको महाराज जी ने समता विलास में लिखा, ये भजन है, सिमरन के बाद भजन की स्थिति आती है। और जब ये इसका अभ्यास आपका गहरा हो जाता है तो आगे ये डेवलप करता है, तो फिर ये कंटिन्यूअस आपको सुनाई पड़ता है, अंदर कंटिन्यूअस इसका अनुभव होता है। जब लगातार आपका ध्यान उसमें बना रहता है, मंत्र को तो आप याद करते हो, इसी वो सिमरन है या अभ्यास है, और इसमें आपका अटेंशन लगा रहता है, जैसे बांसुरी की धुन कहीं से आ रही है तो आप का ध्यान ऑटोमेटिक वहां लगा रहता है, तो इस स्थिति को ध्यान कहते हैं। तो सिमरन, भजन, ध्यान, और ये ध्यान जब बहुत गहरा हो जाता है, इतना गहरा कि शरीर का भी होश ना रहे, तो वो समाधि होती है। तो इसीलिए वो भी पूर्ण अवस्था नहीं है। पूर्ण अवस्था तो माजी करें प्रेमी आत्मलीनता ही है, जहां इंडिविजुअलिटी टोटल खत्म हो जाती है। मां जी कहते हैं बुद्धि अपने आप को उस प्रभु स्वरूप में लीन कर देती है। मां जी ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लीन क्यों कर देती है, क्योंकि बुद्धि समझने लगती है ये और मैं अलग नहीं है, ये मैं एक ही हूं। तो वो जो उसका रियल स्वरूप है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, तो जीव उस स्थिति में जाकर खुद ईश्वर हो जाता है, वो आत्मलीनता ही है, भक्ति की पूर्णता ही है, वो मोक्ष की स्थिति है। यहां जाकर जीव का पूर्ण कल्याण होता है। और ये वाणी क्यों कह रही है, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, उसका अपार कल्याण होगा। वाणी क्यों कह रही है, क्योंकि ये मंत्र ही आपको वहां तक पहुंचाएगा। तो प्रारंभ आपकी साधना का, गुरु आज्ञा का पालन करने से होता है। जो परहेज वो संसार में बता रहा है वो परहेज करने से होता है, तब ये स्थितियां आपके अंदर घटती हैं और मानव जीवन सफल होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वमाला।